तो मकर संक्रांति के दिन दो महत्वपूर्ण घटना हुई है। वैसे बहुत सारी घटनाएं डेफिनेटली है, लेकिन दो बहुत समर्पक घटनाएं हुई हैं। एक घटना है भीष्मदेव का शरीर छोड़ना। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य ने प्रवेश किया उत्तरायण में, तो उसके बाद में भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा। और दूसरी घटना यह है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान के परम दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था कि भगवान जो है वो हमने जो उनकी सेवा में जो भी कुछ किया है कभी भूलते नहीं है, कभी भी नहीं भूलते। हम शायद भूल जाएंगे कि हमने कभी कुछ भगवान के लिए किया था, एक बार उनका नाम लिया था, फिर बोर हो गया, फिर छोड़ दिया, वापस कभी नहीं लेंगे, ये सोच के हमने भूल गए हम लोग। लेकिन कभी कभार जिंदगी में कभी एक बार उनके लिए हमने हृदय से उनको पुकारा था उनके नाम लेकर, तो वो कभी भी नहीं भूलते हैं उसको, हर समय उसको याद रखते हैं। क्योंकि हमारी स्मृति बहुत छोटी है, हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर है, भगवान की स्मृति जो है बहुत ही विशाल है। इसलिए उनकी विशाल स्मृति के अंदर वो कभी भी हमने किया हुआ छोटी मोटी सेवा जो है उसको भूलते नहीं कभी वो। इसलिए भगवद्गीता में क्या बोलते हैं वो, नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि मेरी भक्ति मेरी दिशा में मेरी सेवा में जिसने थोड़ा बहुत भी काम किया होगा कभी कभार, लेकिन वो छोटा सा काम जो है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते मतलब क्या, तार देता है किससे, महतो भयात, जो सबसे भयंकर भय है उससे वो हमको तार देता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। इसलिए किसी ने प्रकार से जीव को जाने अनजाने में क्यों न हो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो जाने अनजाने में जो भी कुछ करेगा वो उसके अक्षय खाते में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसको भगवान कभी भी नहीं भूलेंगे। समझो किसी को आपने प्रसाद दे दिया और उसने खा लिया उसको, वो जो प्रसाद ग्रहण करने की सेवा है वो भी एक सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि वो चेतना को बदलती है, अपने हृदय को बदल देती है, वो भगवान की ओर की भावना को बदल देती है। कभी किसी को आप मंदिर ले गए, उसको दर्शन करवाया मंदिर का, कभी भगवान का नाम उससे मुंह से आपने बुलवाया, किसी जीव की आपने भगवान की सेवा में सहायता की, तो भीष्मदेव के बारे में वैसा ही था। भीष्मदेव बड़ी लंबी उनका चरित्र है, वैसा बड़ी लंबी कथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन भीष्मदेव एक महान भक्त थे भगवान के, साथ साथ विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे वो, और साथ साथ विश्व के उस समय के सबसे महान योद्धा भी थे वो। इतने महान योद्धा थे कि वो अकेले लाखों और करोड़ों सैन्य के साथ अकेले लड़ सकते थे और उसको परास्त भी कर सकते थे। उनके अकेले होते हुए पूरे पांडवों की सेना को समाप्त करने की शक्ति वो रखते थे। ऐसे महान योद्धा भी थे, लेकिन गुण में, नीति में और व्यवहार में, शास्त्र के ज्ञान में, संतों की सेवा में भी वो श्रेष्ठ थे, और भगवान के भक्तों में भी वो बड़े श्रेष्ठ थे। लेकिन भगवान ने, वो इतने महान थे इसलिए उनके रूप में भगवान ने एक हमको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने उनको कौरवों के पक्ष में रखा, ये बताने के लिए कि अगर इतना बड़ा व्यक्ति भी अगर गलत पक्ष लेता है, असत्य का पक्ष लेता है, तो उसका भी सर्वनाश निश्चित है। इसलिए उन्होंने सबसे महान योद्धा को चुना और किसी न किसी परिस्थिति के वश उनको कौरवों के साथ ही रहने का और उसी के पक्ष में युद्ध करने का उनको प्रवृत्त किया उन्होंने। लेकिन थे वो भगवान के महान भक्त, भगवान के विरुद्ध पक्ष में भी युद्ध करने के बाद भी भगवान ये नहीं भूले कि वो मेरे भक्त हैं। तो कैसे वो यकीन होता है हमको कि भगवान याद करते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंगा भी टूटी, उस पर भीम ने गदा प्रहार किया और वो छन्न विच्छन्न हो गया और मरणासन्न भयंकर पीड़ा की अवस्था में वो पड़ा रहा वहाँ पर, मतलब युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके बाद में पांडवों का राज्याभिषेक हुआ, महाराज युधिष्ठिर राजा बने, सिंहासन पर बैठे। उसके बाद में जब राज्याभिषेक हुआ तो अगले दिन भगवान अर्जुन के महल में रहा करते थे, क्योंकि अर्जुन उनको बहुत प्रिय था। तो अर्जुन के महल में वो सोफा पे बैठे थे और आंख बंद करके एकदम मग्न अवस्था में बैठे थे, बहुत मग्न अवस्था में। तो युधिष्ठिर जी उनको मिलने आए और देखा तो बहुत भगवान बड़ी मग्न अवस्था में बैठे, तो उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखा, भगवान का ध्यान नहीं टूटा, भगवान वैसे ही मग्न थे। और बहुत देर बाद वो बड़े अदब से नम्रता से वहाँ खड़े रहे कि भाई चलो भगवान की जब आँख खुलेगी तब हम बात करेंगे उनसे, वहीं खड़े रहे। बहुत देर तक भगवान ने आँख नहीं खोली। तो बहुत देर के बाद में नेचुरली स्वाभाविकता से उन्होंने जब आँख खोली तो सामने युधिष्ठिर को पाया। तो उन्होंने कहा कि कब से खड़े हुआ? मैंने कहा बहुत देर से खड़ा हूँ। बोला अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, आप इतने कौन से गहरे विचार में थे जो आपको समझ में भी नहीं आया कि मैं यहाँ पर आके खड़ा हूँ आपके सामने? तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध भूमि पर पड़े हुए भीष्मदेव के विचार में था। बोले क्यों? क्योंकि वो इस वक्त मेरे गहरे विचार में वहाँ पर मग्न है, वो मुझे याद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप उसको। हमें कितना ये बात जो है कितना हौसला देती है कि हम अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमको याद करते हैं। हमको शायद दिखाई नहीं पड़ेंगे कि हमको याद कर रहे हैं। कभी कभी लगता भी ऐसे है कि है क्या वो, सोचते होंगे क्या मेरे बारे में, मैं कितने कष्ट से गुजर रहा हूँ, कितनी परेशानी मुझे हो रही है, और इस परेशानी में उनको पुकार भी रहा हूँ, क्या सुन भी रहे क्या वो, क्या सोचते भी हैं क्या मेरे बारे में, क्या वो है क्या, कहाँ पर है वो, कितना सा हो रहा है तो किधर है वो ऐसा हमको लगता होगा। लेकिन भीष्मदेव वहाँ दूर कुरुक्षेत्र के, हस्तिनापुर कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, आज भी थोड़ा दूर है ना वो, कम से कम 6 घंटे का रास्ता है आज भी, उस समय पता नहीं कितना था। तो वो राजधानी में बैठे हैं और वो कुरुक्षेत्र के रणांगण में पड़े हुए हैं, रणभूमि पर, बाणों के शैया पर, उसके कण कण से खून इतना बह गया है, इतनी पीड़ा में थे वो। लेकिन वो उस देर स्थिति का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको पिताजी ने उनको वरदान दिया था कि तुम इच्छा मरनी होगे, तुम अपनी इच्छा से मरोगे, कितना भी तुम परास्त हो जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन मरोगे तुम्हारी इच्छा से, मृत्यु जो है तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तो अपने प्राण को पकड़ के रखे थे वो कि मैं मरूंगा तब जब मेरे प्राण प्रिय आराध्य प्राणेश्वर श्री कृष्ण भगवान मेरे नज़रों के सामने आएंगे और उनको ध्यान निहारते हुए, उनको पूजते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, उनका नाम मुख में लेते हुए फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। ऐसे विचार में वो वहाँ पर चिंतन कर रहे थे और उस चिंतन की वजह से यहाँ पर भगवान युधिष्ठिर महाराज जैसा भक्त सामने खड़ा है फिर भी आँख बंद करके उसके विचार में थे जो उसका उनका गहरा चिंतन कर रहा था। तो ये पढ़कर मुझे बहुत मन में ये आश्वस्त हो गया मैं मन में कि निश्चित रूप से आज हम लोग भौतिक दुनिया में पड़े हैं। यहाँ पर भौतिक दुनिया में तो भगवान के साथ तो नहीं है, दूर है हम भगवान से, और भगवान अपने धाम में होंगे, कहीं और लीला करते होंगे। अभी तो मेरे साथ में हृदय में है लेकिन मेरे नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में अभी तक मैं फंसा हूँ, लेकिन फिर भी ये विश्वास अभी मिलता है इस कथा से कि अगर आप भगवान के बारे में विचार करते हो तो निश्चित रूप से आपके बारे में विचार करते हैं। कभी कभी उनका रिस्पॉन्स जो है वो हमको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बारे में विचार जरूर करते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं जो होती है ना, आपको किसी पर कृपा करनी होती है, इसमें आपको किसी को देना है 1 करोड़ रुपए देना है, आप योजना बना रहे हो लेकिन अभी कुछ नहीं दे रहे हो, 1 पैसा भी आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 करोड़ देने की योजना बना रहे हो तो उसमें समय लगता है। और उस समय में हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है ये मेरा शुभचिंतक है, ये मेरा हित चिंतक है, ये जरूर अभी नहीं हमको नज़र नहीं आ रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये मेरा हित चिंतक है और ज़रूर मेरा हित करेगा समय आने पर। जैसे मेरा बालक है अभी छोटी अवस्था में, वो क्या करेगा मेरे से, मेरे लिए, मैं ही सब उसके लिए करते रहता हूँ। लेकिन जब वो बड़ा होगा, मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा, मेरी परवरिश प्राप्त करेगा, मेरी सेवा प्राप्त करेगा, हाँ मेरे साथ अनुभव करेगा प्रेम का, तो वो सारा धन जो है, सारे जो प्रॉपर्टी है धन की, प्रेम के धन की, वो जमा करेगा और फिर समय आने पर मुझे लौटाएगा उस प्रेम को। तो बालक से उम्मीद करते हो क्या? अभी आप 4 साल के बालक से उम्मीद करते हो क्या कि कुछ करता नहीं है, दवा ला के देता नहीं है, खाना नहीं बनाते मेरे लिए, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाता है, क्या फ़ायदा है इसका, खाली मेरे से लेते रहता है वो, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग? अभी नहीं, हम लोग को पता है कि बड़ा होने के बाद जब योग्य बनेगा तो सारा प्रेम जो है वो ब्याज के साथ लौटाएगा, सेवा करेगा, ऐसे हमारे होते ना उम्मीद। उसी तरह से जब भगवान की तरफ से हमको कष्ट आते हैं तो हमको लगता है क्या हो, क्या रहा है, किधर है भगवान, इतना मैं पुकार रहा हूँ, इतना माला जप रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे पे भगवान का, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, तो हमको विश्वास रखना चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान हमें रिस्पॉन्स देंगे। क्या उसका प्रूफ है? उस समय भगवान बैठे हैं हस्तिनापुर के राजमहल में और वो पड़े हैं उधर रणांगण में, रणभूमि पर, लेकिन तुरंत भगवान ने उस समय युधिष्ठिर को बताया, रथ निकालो और सब लोग चलो मेरे साथ। सब भाइयों को बोला राज वस्त्र पहनो, राजा बनकर राज रथ पर राज दंड लेकर चलो। तो कुछ दिन लगे उसको वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए, और फिर वो रणभूमि पर आए। रणभूमि पर आने के बाद में उनका भगवान का विचार परामर्श हुआ। भगवान ने भीष्मदेव के ऊपर अपना जो प्रेम है वो जताने के लिए और लोगों के सामने भीष्म का गौरव होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ये युधिष्ठिर महाराज जो है ना, ये बड़े दुखी हैं। बोले क्यों दुखी है? तो राजा बन गए, अभी युद्ध में भी जीत गए हो। नहीं, उनको लग रहा है कि मेरे वजह से इतना नरसंहार हो गया, मुझे राजा बनाने के लिए इतना लोगों को मारना पड़ा, केवल मुझे राजा बनाने के लिए मैं कितना पापी हूँ। उनको बहुत गिल्ट लग रहा था, मतलब क्या होता, क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलते, बहुत उसको अंदर से दुख, हाँ शर्मिंदगी लग रही थी, वो शर्मिंदगी मतलब पश्चाताप हो रहा था उसको कि मेरी वजह से इतना लोगों को मारा गया मुझे राजा बनाने के लिए, मैं इसकी वजह हूँ, मेरे वजह से कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने राज्य जो है राज्यहीन हो गए। तो उसको मन में बहुत दुख हो रहा था उस बात का, और वो राजा बनने के बाद भी इतना खुश नहीं था। तो उसकी सांत्वना तो स्वयं भगवान भी कर सकते थे, भगवान तो पास में थे उनके, लेकिन भगवान ने भीष्मदेव का गौरव करना चाहा, इसलिए उन्होंने भीष्मदेव को बोला कि आप अभी उनसे बात करो और उनका दुख दूर करो और उनको अच्छा राजा कैसे बनना चाहिए उसके बारे में ज्ञान भी दो, आप तो बहुत विद्वान हो। तो भीष्मदेव ने कहा कि मेरे तो शरीर के अंदर इतने बाण लगे हुए हैं कि दो बाण के बीच में एक उंगली भी घुस सकती नहीं, इतने नज़दीक नज़दीक बाण लगाए गए हैं, हजारों करोड़ों बाण। किसी को पता है कितने करोड़ बाण थे उसके शरीर में? किसी को आइडिया है उसका? बोल सकते कोई अंदाज थोड़ा बोल सकते? 7 करोड़ बाल उस बाण उसके शरीर में मारे थे। क्या हिसाब से मारे थे? हर शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं, रोम ये ना, ये छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसको रोम कहते हैं, रोमांच कहते हैं ना रोमांच, तो ये रोम है, रोम ये 3.5 करोड़ होते हैं। हर एक रोम में अर्जुन ने 2 बाण मारे थे, सोच सकते हैं आप? इतने बाण मारने के बाद में कितना खून बहा होगा और कितना दर्द हो गया होगा, कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितना उनका होश खो गया होगा, क्या क्या बोल रहे कि इतना दर्द हो रहा है मुझे कि मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग में बहुत हार्ड डिस्क में बहुत नॉलेज होगा लेकिन अभी निकालने के लिए मैं स्थिति में नहीं हूँ उसके, तो मैं कैसे बोलूँ उनको ये सब नॉलेज? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ लेकिन मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से तुम तुरंत पीड़ा मुक्त हो जाओगे। तत्क्षण भीष्मदेव के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई, ऐसा आशीर्वाद दिया। और क्या बोला भगवान ने कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सारी स्मृति रहेगी, अभी जो भी तुमने सीखा है वो सब तुमको याद रहेगा और तुम बोल भी पाओगे। और उस आशीर्वाद की वजह से एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था कि भगवान ने भीष्मदेव को छुआ, मतलब स्पर्श किया उनको, और स्पर्श करके आशीर्वाद दिया, उनके दिव्य स्पर्श के साथ ही सारी पीड़ा नष्ट हो गई। और फिर महाभारत में लिखा है कि 55 दिन तक भगवान को, भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा दिया। किस जगह दिया है कि 5 दिन बोला उन्होंने, और किस जगह दिया 55 दिन, कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय तक बोला उन्होंने। और महाराज युधिष्ठिर को पूरा ज्ञान दिया धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, औरतों को, बच्चों को, वृद्धों को, कमज़ोर लोगों को कैसे संभालना चाहिए, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, युद्ध के नियम क्या होते हैं, हर धर्म के बारे में, राजधर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, हाँ, सब धर्म के बारे में जानकारी दिया उनको। वो पूरा अरण्य पर्व, सॉरी भीष्म पर्व के नाम से उसमें महाभारत में मिलेगा आपको, भीष्म पर्व, भीष्म की शिक्षाएं जो महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने दी। और उसके बाद में फिर सूर्य उत्तरायण में गया, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया तो भीष्मदेव की शिक्षा समाप्त हो गई। फिर सब लोग, ऐसे कहा गया कि जैसे संध्या के समय सारे पंछी भी शांत हो जाते हैं एक समय के लिए, बहुत देर चिंतन करते हैं, एक समय आता है एकदम शांत हो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं, तो उस तरह से सब आसमंत जो था, इतना वातावरण था एकदम शांत हो गया, नीरव शांतता बोलते हैं उसको। नीरव का मतलब क्या होता है, अगर पिन भी गिरेगा ना तो उसका आवाज आएगा, पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना उसको। और उसमें फिर भगवान जो है वो महाराज भीष्मदेव के चरणों के पास गए, मतलब आंखों के सामने आ गए उनके, और सब पांडव उनके राइट साइड में बैठे। कहते हैं कि कुछ हजारों ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठा हो गए और वो एक साइड में बैठे, और ये दिव्य व्यक्ति का जो दिव्य शरीर छोड़ने का घटना थी उसका साक्षात्कार करने के लिए, विटनेस, साक्षी बनने के लिए वहां पर खड़े हो गए सब। और सब लोग पांडव एक साइड में, सामने भगवान। तब भीष्मदेव ने बाण से लदे हुए हाथ ऐसे ऊपर उठाए, सोच सकते हैं आप, ऐसे दोनों हाथ में अंदर अनंत बाण है, ऐसे ऐसे ऊपर उठाए और जोड़े ऐसे हाथ, और आंखों में आंसू लेकर भगवान का स्तुति आरंभ किया उन्होंने। क्या परम दयालु हो, परम कृपालु हो, परम भगवान हो, आप ही नियंत्रक हो, आप ही सब करने वाले हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बहुत उनका स्तुति किया, गौरव किया। और आंखों में आंसू लेकर पलकी भी न झुकाते हुए एकाग्र नज़र से भगवान का दृष्ट चाहे मुख कमल निहारते हुए भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया। इतना बड़ा दिव्य, जब उनका, जब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया ना हाथ लगाकर कि आपकी पीड़ा नष्ट हो गई, तभी आकाश से पुष्पवृष्टि हो गई, सभी देवताओं ने पुष्प वर्षाया उनके ऊपर। कितना महान व्यक्ति है ये, हाँ, भगवान उसके मुंह से युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना करना चाहते हैं। कितने महान व्यक्ति होंगे जो मरने की स्थिति में है फिर भी भगवान उनका गौरव करना चाहते हैं। इसलिए उस आशीर्वाद के साथ में तुरंत पुष्प वर्षा हो गई। मतलब क्या हुआ, देवता लोग भी, देवता लोगों के छोड़कर आकाश में एकत्र हुए थे उनका दिव्य शरीर छोड़ने की घटना को देखने के लिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति गुजरता है ना, सब लोग आते हैं ना देखने के लिए, इसे देवता लोग भी, देवता लोगों तक उनकी कीर्ति थी, सब उनको आदरपूर्वक देखते थे। सभी देवता अपने अपने लोगों से पुष्पमालाएं लेकर आकाश में एकत्र हो गए थे। और फिर जब दोबारा उनका शरीर छूट गया, उनकी आत्मा जो है भगवान के धाम चली गई, तो दोबारा पुष्पवृष्टि हो गई भीष्मदेव के ऊपर, उनका शरीर छूट गया। तो भीष्मदेव का जो ये दिव्य घटना है, तिरोभाव कहते हैं उसको, शरीर छोड़ने की जो घटना है, ये बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श तरीके से शरीर छोड़ा है, आइडियल डिपार्चर। आइडियल क्यों, क्योंकि एक तो उत्तरायण आने के बाद में शरीर छोड़ा, तो जो लोग कर्मकांडी हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम उत्तरायण में मरना चाहिए, उत्तरायण मरने से ऊपर की ओर गति होती है। भीष्मदेव को उत्तरायण में मरने की कोई जरूरत नहीं थी, वो इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो दक्षिणायन में मरते थे फिर भी भगवान के धाम में चले जाते थे। तो भगवान ने गीता में ऐसा नहीं कहा है कि जो जो उत्तरायण में मरेगा वो मेरे पास लौट के आएगा, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने क्या बताया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम। उन्होंने क्या बताया, जो भी जो सोचेगा वहां पहुंच जाएगा। और आपने क्या बोला है, अंतकाले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है शरीर को छोड़ते समय वो मुझे प्राप्त करेगा। इस दृष्टि से वो अगर कहीं भी और किसी भी समय मरते, भगवान की याद करके मरते, तो भगवान को ही मिल जाते वो। लेकिन जो दुनियादारी के लोग हैं, जो कर्मकांड को मानते हैं, उनके लिए भी एक आदर्श मृत्यु था उनका। ऐसे कहा गया, एक क्षत्रिय के लिए, एक राजा के लिए और एक भक्त के लिए, तीनों की दृष्टि से आदर्श मृत्यु उनकी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है वो। कैसे? भगवान के भक्तों के संग, ऋषि मुनि के संग, भगवान के सामने भगवान को देखते हुए, भगवान का विचार करते हुए, उन्हीं के प्रेम में आंसू बहाते हुए, उनको ही प्रार्थना करते हुए, अपने सारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हमको ये सीखना चाहिए कि भगवान का जो स्मृति है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको लगता होगा इतने कष्ट हो रहे हैं जीवन में मेरे, क्या हो रहा है, भगवान क्या करने वाले हैं, अभी तो कुछ किया नहीं उन्होंने, स्थिति तो बदलती नहीं, बिगड़ती जा रही है, और क्या हो क्या रहा है। नहीं, ऐसे कहा गया कि हमको शांति से इंतज़ार भी करना चाहिए, सही समय पर, सही मौके पर वो आपको अपनी कृपा देंगे, और अभी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं दे रहे हैं। अभी भी जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ हो रहा है। हमको लगता है बहुत दर्दनाक है हमारे लिए वो, ये हमारे लिए अच्छा का अच्छा कैसे हो सकता है, ये तो अच्छा नहीं है जो हमारे लिए हो रहा है, तो ये कैसे भगवान सैंक्शन कर सकते हैं। हमारी आत्मा की उन्नति करने के लिए, हमको दुनियादारी के झूठ मूठ के प्रेम से विरक्त करने के लिए, डिटैच करने के लिए भगवान कई घटनाएं करते हैं, कई ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में लाते हैं जिससे स्वतः ही स्वाभाविक दृष्टि से हम दुनियादारी के मोहों से और बंधनों से विरक्त हो जाते हैं, तब भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लोहा अगर आपको उसका शेप बदली करना है, जो वो ऐसा गोल है और आपको उसका तलवार बनाना है, तलवार, तो क्या करेंगे उसका, उसको पहला अग्नि में तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे तो एकदम नरम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इतना बड़ा हथौड़ा लेंगे और उसको ठोक ठोक के लंबा करेंगे, और जब तक उसका तुम्हारा मन में जो शेप है वो पूरा शेप नहीं बनता है उसका, तब तक उसको मारते रहेंगे और आग में जलाते रहेंगे जलाते रहेंगे, तो लोहा सोचते रहेगा क्या है, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। हाँ, व्हाट इज दिस, एक तो अग्नि में तपा रहे हैं, ऊपर से हथौड़ा भी मार रहे हैं, ऊपर से कितना दर्द हो रहा है मुझे, पता है क्या, इतना जल रहा हूँ, ऊपर से दर्द भी हो रहा है, इतना मार भी खा रहा हूँ मैं। लेकिन एक बार तलवार का शेप आ गया ना बराबर से, तो अग्नि में रखना भी बंद और मारना भी बंद, तब खाली तलवार का उपयोग किया जाएगा जिस तरह से तलवार का उपयोग होता है और होना चाहिए। तो लोखंड के गोले से लोखंड की तलवार बनने तक लोखंड को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर वो मिलता है खान में, बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर मिलता है, फिर उसको उठा के लेके आते हैं 6 फुट बाय 6 फुट बाय 6 फुट, हाँ, उसको मूर्ति बनानी भगवान की, तो मूर्तिकार क्या करता है, एक बड़ा लेता है कीला, ऐसा जोरदार नोकदार कीला लेता है और हथौड़ा लेता है, और ठोक ठोक के पहले बड़े बड़े किले से ठोकता है और पूरा सब कब्जी निकाल लेता है, फिर छोटा किला लेता है एकदम शार्प, और फिर ठोकता है उसको, इतना ठोकता है कम से कम करोड़ों बार ठोकता होगा वो, और उसके बाद में एक समय पर ठोकना बंद कर देता है, फिर उसकी प्रतिष्ठापना की जाती है, फिर केवल उसकी पूजा होती है उसके बाद में, फिर कोई खिला लेके ठोकता नहीं है। और ये उस मूर्ति को अगर कुछ पिन लगा ना, पिन तो आपको बताते हैं ये भगवान की मूर्ति है, उसको पिन भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, आपका हाथ लगा के फिर पिन लगाओ उसको, अगर फेंटे में पिन लगाने का है अपना उंगली बीच में रखो और उसके ऊपर से पिन लगाओ, भगवान के शरीर में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस पत्थर को मूर्तिकार ने अनंत करोड़ों बार किले से और हथौड़े से ठोका हुआ है, उसी मूर्ति को बोला जा रहा है कि अभी आपको ये 50 पिन का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। मराठी में कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही। हाँ, पत्थर को टाकी मतलब वो ठोकने वाला काम, वो अनंत बार ठोकने के बाद ही उसको देवत्व प्राप्त होता है, वो पूजनीय बन जाता है पत्थर, फिर उसकी पूजा की जाती है ना। तो पत्थर बोलेगा क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, अच्छा मैं पड़ा था कान के अंदर, कोई तकलीफ नहीं थी, आपने मेरे को यहाँ से उठा के लेके आया और 50,000,000,000,000,000 बार मुझे एक बड़े किले से, छोटे किले से, जहाँ चाहिए वैसा ठोका मुझे आपने, क्या क्या पाप किया था मैंने। लेकिन अगर पत्थर को पता है समझो कि मेरे से मूर्ति बनाई जा रही है और मूर्ति बनने के बाद में केवल मेरी पूजा ही की जाएगी, दूध दही मधु और घी और दूध सबका अभिषेक किया जाएगा, फूलों से लदा जाएगा, अलंकार डाले जाएंगे, श्रृंगार किया जाएगा, आरती उतारी जाएगी, भोग लगाए जाएंगे, हर समय लोग दंडवत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, हाँ पूजा करेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, चलो इतना सा मैं सह लेता हूँ, बाद में सब होगा ना, ये निश्चित कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब आपको जानकारी है कैसे होगा तब आप वो सारे घाव सहन कर सकते हो, लेकिन जानकारी नहीं होगी तो आदमी तड़पता रहेगा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ है भगवान, क्या कर रहे हैं, मैं इतना नाम पुकार रहा हूँ कुछ हो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको पूजनीय मूर्ति बनाने के लिए ये सारा कष्ट मिल रहा है। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमको कष्ट हुए थे, हमने उसको स्वीकार किया, भगवान की इच्छा मानकर, भगवान की योजना मानकर, भगवान का प्लानिंग मानकर उसको स्वीकार किया। तो एक दिन आप जब तैयार हो जाएंगे ना बिल्कुल, तो भगवान आपको वहाँ से उठा के अपने पास लेके जाएंगे और अपने पास रखेंगे, और वहाँ पर भगवान के पास में कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रिश्तेदारी का दर्द नहीं है, देयर इज नो पेन ऑफ रिलेशनशिप्स, हाँ कोई परिवार का कष्ट नहीं है, कोई धन की समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, मच्छर नहीं है, कुत्ता नहीं है, हाँ उनके द्वारा होने वाला कष्ट नहीं है। आपको रेडी कर रहे हैं वो यहाँ से निकालने के लिए। जिस दिन कैदी बोलेगा ना जेलर को, साहब मुझे मेरा गुनाह का भी एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूँगा और आपके जेल में रहते हुए भी अच्छा ऐसा काम करूँगा कि जल्दी से बाहर निकल जाऊँ, तो जेलर क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मेरा 3 महीना अगर व्यवहार अच्छा रहेगा ना तो मैं तुम्हारे लिए अर्जी करूँगा और तुमको जल्दी रिहा कर दूँगा। तो 3 महीने उसको पत्थर तोड़ने पड़ते कि नहीं, बाद में अच्छा होने के बाद में भी उसको 3 महीने पत्थर तोड़ने ही पड़ेंगे और अपना व्यवहार से ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं अभी अच्छा हो गया हूँ, फिर जेलर का विश्वास हो जाएगा, फिर वो अर्जी करेगा गवर्नमेंट के अंदर, फिर उसको और टाइम लगेगा, तब तक पत्थर तोड़ने पड़ेंगे उसको, उसके बाद में वो रिहा हो जाएगा, समय से बहुत पहले रिहा हो जाएगा, वो पूरे कष्ट से एक ही बार निकल जाएगा वो पूरा, लेकिन थोड़ी देर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। वो बोलेगा कि मैंने 6 महीने से बदल चुका हूँ, मैं अभी भी जेल में हूँ, क्या चल कह रहा है, अच्छा होने का लाभ क्या है, कुछ लाभ नहीं है, 6 महीने बीत गए, लेकिन 6 महीने जेलर उस प्रोसेस के अंदर है आपको बाहर निकालने के, उसको वो टाइम लगने वाला है आपको निकालने के लिए, वो विश्वास हो गया उसको कि आपकी भाई भावना बदली हो गई है, आपको पश्चाताप कर रहे हो, आपको बाहर निकालने के लिए वो कोशिश कर रहा है, उसको टाइम लगेगा इतना सा, फिर आप अपने आप को बाहर पाओगे। उसी तरह से आपने अगर समझ लिया है कि दुनिया में कष्ट ही कष्ट है, सब दर्द है, यहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी का तो है ही, लेकिन साथ साथ परिवार का भी कष्ट है, धन का भी कष्ट है, रोग का भी कष्ट है, हाँ जहाँ जाए वहाँ पर कष्ट है, आंधी तूफान का भी कष्ट है, तब मुझे भगवान का भक्त बनना चाहिए, मुझे अभी नहीं रहना है यहाँ पर, जितना जल्द हो सके उतना निकलना है मुझे यहाँ से। लेकिन फिर भी जितना जीवन आपके कर्म के अनुसार यहाँ पर दिया गया ना, उतना आपको जीना ही पड़ेगा ना, आप तो आत्महत्या नहीं कर सकते ना, आत्महत्या करने से भूत बन जाएंगे और लटक जाएंगे कहीं कई साल तक, और कष्ट भोगेंगे, जितना कष्ट अभी मिल रहा है उससे कई गुना कष्ट जो है उस प्रेत की अवस्था में होता है, तो हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना समय अभी बीत गया है, बचा हुआ है, उसमें हमको भगवान की याद में, भगवान की स्मृति में, भगवान के भजन में, जप में, कीर्तन में, सेवा में अपना समय बिताना है, पाप कर्मों को त्याग कर भगवान का भक्त बनकर भगवान को ये विश्वास दिलाना है कि अभी मैं आपके पास आने के योग्य हो गया हूँ, अब तक के पहले योग्य नहीं था, अभी मैंने जिस दिन तय किया कि आपके पास आना है उस दिन के बाद में आपके पास आने के लिए योग्य बनने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और जब भगवान का विश्वास हो जाएगा कि अभी ये बिल्कुल तैयार है, विरक्त भी हो गया है, मुझ पर मन भी लग गया है उसका, दुनिया से विरक्त हो गया है और मेरे धाम में रहने योग्य हो गया है, तुरंत आपको लेके जाएंगे, उनको ये विश्वास होना चाहिए। जैसे आपको मन में विचार आया कि मुझे बालक होना चाहिए, तो नेक्स्ट डे आपको बालक नहीं मिलता है ना, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, फिर प्रेगनेंसी आएगी, फिर 9 महीने प्रेग्नेंट रहना पड़ता है, उसके बाद में फिर डिलीवरी होता है। तो जो 1 साल पहले बालक होने की मन में इच्छा की थी, 2-3 महीने प्रेगनेंसी होने में गए और बाद में 9 महीने प्रेगनेंसी में गए, 1 साल के बाद में जो 1 साल पहले इच्छा प्रकट की थी मन में उसका एक साल के बाद में आपको बालक के रूप में फल प्राप्त हो रहा है, होता है ना ऐसे? तो वेट तो करना पड़ता ना, पेशेंस तो होना ही पड़ता है, लेकिन इस बीच में हमको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है, हो रहा है अपने ढंग से हो रहा है जो होना है ना। 6 महीने बाद बोलेंगे क्या हो रहा है, तो बच्चे अभी 3 महीने का प्रेगनेंसी है, अभी थोड़ा सा है, जन्म क्यों नहीं हो रहा उसका, अभी टाइम है उसको, 6 महीने लगेंगे और उसको ऐसा बोलेंगे ना आप, डॉक्टर लोग बोलेंगे ना उसको, नर्स लोग बोलेंगे ना, अरे जल्दी क्यों करते हो इतना, अरे भाई 6 महीना हो गया इच्छा करके, 6 महीने से इच्छा कर रहा हूँ अभी तक, तो क्या बोल रहे हैं आप, नहीं बच्चा 3 महीने का, अभी 6 महीना अभी आपको रुकना पड़ेगा आपको, फिर 3 महीने बाद आएगा, बोलेगा कि अभी 3 महीने और बीत गए कभी आ रहा है बच्चा, तो आप बोलेंगे 3 महीने बाकी अभी और 6 महीने हो गए अभी, नहीं मैंने इच्छा करके 9 महीने हो गए, तो ठीक है फिर भी बच्चा अभी 6 महीने का है, उसका 9 महीना पूरा हो जाएगा ना तो उसका डिलीवरी होगा, तब बच्चा आपको हाथ में आएगा, और बोलेगा कि अरे बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, तो 1 साल बाद बोले कब डॉक्टर बनेगा ये, अभी तो 1 साल का है, अभी तो उसको कॉलेज जाने का टाइम है, अभी 5 साल में स्कूल जाएगा, फिर बाद में कॉलेज जाएगा, फिर बाद में MBBS एडमिशन लेगा, 21 साल में डॉक्टर होगा, तो 21 साल वेट करना पड़ेगा ना उसको। वैसे ही संयम की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे कहते हैं कि भगवान कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करते, और ये सच है, वो कैसे गलत नहीं है हमको बाद में मालूम पड़ता है, पहले ही पता नहीं चलता है। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि एक राजा था बीरबल और अकबर, एक बार बीरबल की खाते खाते फल काट रहा था तो चाकू से उसकी उंगली कट गई, तो बीरबल ने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान की इच्छा से अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, व्हाट मेरी उंगली कट के खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तुम बोल रहे अच्छा हो रहा है, तुमको मैं जेल में डाल देता हूँ। तो बीरबल को अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया, जेल में डालते हुए उसने कहा कि जो भी भगवान की इच्छा से होता है वो अच्छा ही होता है। तो ये भी खबर अकबर को आई कि उसने जेल में जाते हुए कहा कि भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो अच्छा होता है, बोला अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, फेंक दो उसको जेल के अंदर, उधर ही सड़ने दो उसको। तो फिर डाल दिया जेल में उसको। फिर कुछ दिन बाद अकबर जो है अपने बाकी मंत्रियों को लेके गए जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो शिकार खेलने के बाद गए तो अंधेरा हो गया बहुत रात को, तो कहीं फंस गए कहीं जगह पर, तो उनको ना भिल्ल लोगों ने पकड़ लिया, जंगल के होते ना राजा होते जंगल के, बहुत भिल्ल लोग होते हैं, उनका बहुत अजीब शस्त्र होते हैं, तो उन्होंने 4-5 इस घुड़सवारों को पकड़ लिया, बहुत लोगों ने आकर अरेस्ट कर लिया, और बोला कि अच्छे दिखते हैं, हमारा नबी बलि देने का समय आ गया है तो ये अच्छा आदमी दिखता है, इसको जरा टेस्ट करो, बलि के लिए तैयार रहो उसको। तो उसने उसको नहलाया, उसको अत्तर लगाया, उसको तेल लगाया, उसका श्रृंगार किया और उसको तैयार कर ही रहे थे तो देखा था अरे इसकी उंगली कटी हुई, तो उनके गुरु को बताया, उन्होंने कह रही ये बलि जो है ना इसका शरीर भंग हो चुका है, ये बलि देने के लिए योग्य नहीं है। तो गुरु आ गया, देखा अरे हाँ उसका तो शरीर भंग हो चुका है, ये तो बलि के लिए योग्य नहीं है, छोड़ दो उसको, ये हमारे बलि के योग्य नहीं। तभी जाके उसको ध्यान में आया, अरे बीरबल ने कहा था जो भगवान की इच्छा से होता है वो अच्छा ही होता है, तो बड़ा खुश होकर वो लौट के आया और तुरंत बीरबल को रिहा कर दिया उसने। तो बीरबल को पूछा अभी तुमको कैसा लगता है, बोले ठीक है, जो भगवान की इच्छा है वो अच्छी होती है। बोले मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमको जेल में डाला मैंने कष्ट भोगने के लिए, वो कैसे अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। बोले सिंपल सी बात है, हर बार शिकार खेलने को आप मुझे लेके जाते हो, हाँ अगर तुम्हारी उंगली कटी होती और मैं अच्छा होता तो मुझे बलि चढ़ाते ना, कि इतने चढ़ाते हो लोग, मतलब देवड़ा सीन यू, आपको देखते थे आपका शरीर भंग हो चुका है, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और मेरा शरीर ठीक था तो मुझे काटते ना वो लोग नदी के, अपना नर बलि चढ़ाते थे देवी के सामने, तो चूंकि आपने मुझे जेल में डाल दिया मैं बच गया, तो ये भगवान की तरह से अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तभी समझ में नहीं आया आपको। लेकिन निश्चित रूप से भगवान ने आपको मेरी तरफ से गुस्सा दिला के मुझे जेल में डलवा के मुझे बचाया ना भगवान ने, इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से अच्छे के लिए होता है, केवल श्रद्धा की जरूरत है। इस तरह से भीष्मदेव के जीवन में भी ऐसा ही है, इतना सारा कष्ट उन्होंने भोगा, लेकिन जिस स्टोरी का अंत जो है अच्छा होता है वो स्टोरी भी अच्छी मानी जाती है ना। अगर इस स्टोरी के, हमारे जीवन की स्टोरी के अंत में अगर हम भगवान को मिल जाते हैं, भगवान का हमारा मिलन होता है, तो हमारे जीवन में कितना भी कष्ट हुआ तो हु केयर्स यू नो। अगर इसका, अगर एंड में, ये सबके एंड में भगवान मिलने वाले हैं, सब मंजूर है हमको, हम लोग ये कीमत चुकाने को तैयार है, वी आर ओके विद दैट। तो भगवान ने, भगवान के लिए भीष्मदेव ने सब प्रकार की जो भगवान की इच्छा थी वो पूर्ण की। भगवान ने उनको उदाहरण बनाकर ये लोगों को दिखाना चाहा कि देखो इतना बड़ा आदमी भी अगर असत्य का पक्ष लेता है तो उसका भी नाश होता है। ये भी उन्होंने अपने आप को अर्पण किया उदाहरण के लिए ना, कि चलो भाई मेरे को उदाहरण बना लो, कोई बात नहीं, चाहे मैं, लोग बोलेंगे इन्होंने भी असत्य का पक्ष लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है कि मेरा रोल ऐसा है तो मैं वो रोल करने को तैयार हूँ। सेवा किया ना भगवान की उन्होंने बड़ी। आज भी हम कह सकते हैं ना कि भीष्म देव भी नष्ट हो गए असत्य का पक्ष लेकर, तो हम और तुम क्या हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि भीष्मदेव ने अपने आप को निछावर कर दिया भगवान की इच्छा के लिए। और भगवान ने, उन्होंने जितनी भी सेवा की थी उनकी, उस सब सेवा की याद करते हुए भगवान मग्न हो गए थे उनके विचार में, और सबको लेकर पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्मदेव मरने के समय मेरा दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने सारी योजना बना के सबको लेके गए वो, और अंतिम समय पे उसके सामने खड़े हो गए और दर्शन देकर अपने धाम में उनको लेके गए। हमको भी कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी जीवन में, लेकिन विश्वास के साथ में हमको चलना है कि अगर मैं भगवान को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भगवान भी मुझे याद कर रहे होंगे निश्चित रूप से, और मेरे लिए कैसे मुझे उनके पास जल्दी लेने के लिए क्या करना होगा उसकी योजना बनाते होंगे, और वही योजना अभी अमल में आती होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो भगवान को याद करता है भगवान उसको कभी भी नहीं भूलते, इस पर हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। हमको भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम ने सुना है ना हमने कि वो हमको याद करते हैं, उस बात पर विश्वास रखते हुए जीवन को चलाना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं याद करते उनको, उसी दुख में रहते क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हमारा फर्ज क्या है, चाहे दुख हो या सुख हो, सुखे दुखे भूले ना को बदने हरि नाम करो रे गाए गोरा मधुर स्वरे। वो क्या बोलते हैं, सुखे दुखे भूले ना को, सुख हो या दुख हो उनको भूलना नहीं चाहिए, वदने हरि नाम, मुख से हरि नाम करते रहना चाहिए, उनको याद करते रहना, उनको पुकारते रहना चाहिए। गृहे था को वन्य था को सदा हरि बोले डाको, घर में रहो गृहस्थ बनकर या वन में जाओ सन्यासी बनकर, मुख से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। गृह ताको वन्य ताको सदा हरि बोले डाको, हमेशा भगवान को पुकारते रहो। सुखी दुखी बोले नाको वदने हरि नाम करो रे, वन में भी और घर में भी, सुख होगा तो भी उनकी याद करो और दुख होगा तो भी उनकी याद करते रहो, इसी से हमारा जीवन जो है धन्य रहेगा। भगवान को भी मौका मिलता है, देखो मेरा भक्त कैसा है, इतने दुखों के सागर गिरने पर भी वो मुझे भूलता नहीं है। पांडवों पर कितना कष्ट हुआ, हाँ उनकी पत्नी का अपमान हुआ, हमारे ऊपर तो इतना संकट तो नहीं आया ना अब तक कि हमारी पत्नी का राज दरबार में वस्त्र निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग असहाय होकर खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी घटना हमारे जीवन में नहीं हुई ना। या प्रहलाद के जीवन में उसको चाकू से भोंका गया, उसको विष दिया गया, उसको पहाड़ से फेंका गया, उसको सांप के मुंह में दिया गया, हाथी के पैर तले दिया गया, हाँ हमारे किसी के जो में ऐसा संकट आया कि आज तक बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं, नहीं प्रहलाद जैसा ही कष्ट मुझे भी हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो प्रहलाद का जो कष्ट था, जो पांडवों का कष्ट है, उतना कष्ट हम लोग को होगा तो हम लोग उधर ही मर जाएंगे, तुरंत झेल ही नहीं पाएंगे उसको। और ऐसा कष्ट देने बाद भी भगवान ने उसको बचाया ना, सांप के मुंह दिया सांप ने काटा ही नहीं, हाथी के पैर दिया हाथी ने पाँव रखा ही नहीं, शस्त्र चलाया शस्त्र काट ही नहीं पाया उसको, पहाड़ से फेंका तो बाहर ने भगवान ने उसको झेल लिया अच्छी तरह से, नरम नरम फूलों के गद्दी के ऊपर, हाँ अग्नि में जलाने की कोशिश किया तो वो होलिका जल गई और ऐसे रह गए, भगवान ने बचाया ना, बहुत कष्ट दिया लेकिन हर कष्ट से बचाया ना भगवान ने उनको। यही हमारा आशा, हमारे लिए क्या है, यही आशा है कि भले हमको कष्ट मिलेगा लेकिन उनको याद करेंगे तो वो कष्ट नष्ट भी होगा, और कष्ट केवल नष्ट नहीं होगा भगवान की प्राप्ति भी होगी। इस कष्ट के अंत में जब कष्ट को बोलेंगे थैंक यू और स्वीकार करेंगे उसको, तो कष्ट के अंत में भगवान की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए कष्ट में केवल रोते मत रहना, कष्ट में दुख भी होता है आप बोल सकते हो किसी को दुख हो रहा है, लेकिन भगवान को मत भूलना, भगवान को नाम लेते रहना, फिर भगवान आपको भी याद करेंगे और हमारा भी उद्धार करेंगे। तो ऐसा ये मकर संक्रांति का दिन है जिसमें हम ये सब याद करते हैं कि कितने महान थे भीष्मदेव, उन्होंने कितना श्रेष्ठ उदाहरण हमारे लिए दिया है। इतना कष्ट सहने के बाद में हम लोग तो जीवित रहेंगे क्या? अगर आपके पास समझो इच्छा मरणों का वरदान होगा, समझो आपको किसी ने वरदान दिया कि आप इच्छा मृत्यु के भागीदार होंगे, आप जब चाहे तब मर सकते हो, तो अगर हम भीष्मदेव की अवस्था में होते ना, इसके एक एक रोम में दो दो बाण लगे हुए हैं, 7 करोड़ बाण, तो आप बोलेंगे अभी मरना अच्छा है भाई, इतना दर्द कौन सहेगा? आप सोच सकते इस बात को? जिसके पास वो मौका था, वो वर का उपयोग करने का कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे अभी मृत्यु चाहता हूँ, बस बस हो गया अभी, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे भगवान का दर्शन करते ही मरना है, इसलिए भीष्म देव ने स्वतः की इच्छा से 7 करोड़ बाण का कई दिन तक पीड़ा सहन किया। उतना पीड़ा हमको लाइफ में आया क्या? कभी नहीं आया, निश्चित रूप से नहीं आया। तो भीष्म देव ने भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ने के लिए इतने दिन तक इंतजार किया, और तब तक वो दर्द भी सहन किया, ऐसा नहीं कि फ्री में उनको, एंड में जब भगवान ने उनको आज्ञा दिया तब भगवान ने छूकर उनको दर्द से मुक्त कर दिया, लेकिन तब तक तो उन्होंने दर्द का सहन किया था ना, ये उनकी महानता है। और उसी उदाहरण से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी ऐसा दर्द सहन करने की शक्ति दो, ताकि हम भी दर्द को सहनते सहते हुए आपकी याद कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दर्द में इतना डूब जाएंगे आपकी याद ही नहीं आएगी, नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि कोई हमको याद दिला भी दे और हमको याद आती भी रहे, और दर्द हम सहन करने की शक्ति भी प्राप्त करते रहें, और उसमें ही आपके विचार में मग्न रहें। तो जब हिरण्यकश्यप को मारकर नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी गए, तो भगवान ने बताया उनको, हे प्रहलाद, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए कि मेरे लिए, मेरे नाम के लिए, मेरी सेवा के लिए तुमने पिताजी के प्रति इतना कष्ट सहन किया। आप अगर पिताजी को बोलते हाँ यस पिताजी, तो सारा कष्ट मिटता ना आपको। वो बोल रहे थे मेरा नाम लो, उसका नाम मत लो, विष्णु का नाम। अगर आप बोलते यस पिताजी, तो आपको कोई कष्ट नहीं होता था, लेकिन आपने बोला नहीं, मैं उनका नाम लूँगा, आप भगवान नहीं है, वो भगवान है, मेरे लिए आपने इतना कष्ट सहन किया, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। प्रहलाद ने क्या बोला, पिताजी मतलब भगवान, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, देखो ना जब मुझे फेंका गया तो आपने मुझे जाके झेला ना, मुझे कहाँ कष्ट हुआ, मैं तो केवल आपका नाम लेता रहा, बस हर समय मैं आपका नाम लेता रहा, गाता रहा आपका नाम, तो मुझे क्या हो रहा है उसका खबर ही नहीं चला, कब शस्त्र चले, कब विष का प्याला दिया गया, कब जलाने का प्रयास किया, कब सांप के मुंह में दिया गया, कब हाथी के पैर जला दिया, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे प्रहलाद बोल रहे हैं, कष्ट तो उनका हुआ, लेकिन भगवान के नाम में और उनके नाम जप में, उनकी स्मृति में इतने मग्न थे कि उनको वो कष्ट का अनुभूति नहीं हुआ। और ऐसा होने पर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं आपसे कृतज्ञ हूँ बहुत, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे लिए तुमने इतनी छोटी अवस्था में इतना कष्ट सहन कर लिया। तो जो व्यक्ति आने वाले कष्टों को प्राप्त करते हुए भगवान का धन्यवाद देता है, भगवान उसके क्या कहते हैं, उसको नौकर बन जाते हैं, उसको अपना लेते हैं पूरा। जो मेरे लिए कष्टों को हाँ बोल रहा है, मेरे लिए कष्टों को धन्यवाद दे रहा है, कष्ट होते हुए मेरे लिए सहन कर रहा है, मेरी याद कर रहा है, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए पांडवों के ऋणी थे वो, कि उन्होंने इतना कष्ट करते हुए सहन सहते हुए भी कभी उनको भगवान को भूले नहीं वो। इसलिए ये भक्त और भगवान का प्रेम का रिश्ता है। भक्त के जीवन में जो भी होता है वो उनकी इच्छा से होता है, और भगवान अपने भक्त के उदाहरण के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मेरी भक्ति करने बाद मेरा भक्त जो है कितना गौरवशाली बन जाता है, कितना दिव्य बन जाता है, कितना पूजनीय बन जाता है। जैसे वो पत्थर जो है वो टाके के घाव सहते सहते अल्टीमेटली भगवान बन जाता है, सब उसकी पूजा करते हैं। भगवान दिखाते, देखो इतना करोड़ों घाव सहन किया ना उसने, यही तो उसका गौरव है, इसलिए आज उसका पूजा जा रहा है। तो हमें भी एक दिन ऐसे ही भगवान योग्य बनाएंगे, आज उनकी याद करेंगे तो एक दिन हमको योग्य बनाएंगे और अपने धाम में अपने गोद में लेके जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत